بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز.
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے. پریہ شروتا متروں, آج کے کارکرم کا شبھارمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ بقرہ کی 154 سے 157 آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں. قاری ہیں شری پرہیزگار.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم.
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے. اور جو لوگ ایشور کے مارگ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو, بلکہ وہ تو جیوت ہیں پرندو تم اسے سمجھ نہیں پاتے. اور نسندے ہم تھوڑے بھے, تھوڑی بھوک, کچھ جان مال اور اتپاد میں کمی سے تمہاری پریکشا لیں گے. اور ہے پیغمبر, آپ دھیروانوں کو شبھ سوچنا دے دیں جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں کہ نسندے ہم ایشور ہی کے لیے ہیں اور اسی کی اور واپس جانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے پالنہار کی اور سے آشیرواد اور دیا ہے, اور یہی لوگ صحیح مارگ پر ہیں.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. شروتاؤ, میں ہوں احمد عباس, میرا سلام سویکار کیجیے. ہمارا پرسارن آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir. ہماری ویب سائٹ ہے parstoday.com/hi. واٹس ایپ پر ہمارا سمپرک نمبر ہے 0098-90-350-6549-2. تو آج گروار ہے, تیر ماس کی 2, ذی قعدہ کی 23 اور جون کی بھی 23 تاریخ. ہماری سمے کی سبھا میں پرستت کیے جانے والے کاریکرموں کی روپریکھا نوٹ کر لیجیے. سب سے پہلے ہم پرستت کریں گے انتراشٹریہ سماچار, جس کے بعد راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم آپ کی سیوا میں پرستت کیا جائے گا. راجنیتک چرچا کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے کاریکرم آج کی بات, جس میں بھارت سے جڑے کسی وشے کی اور اس سے سمبندھت پہلوؤں کی سمیکشا کی جاتی ہے. اور اس کے بعد سبھا کا انتم کاریکرم سفل مہیلائیں آپ کی سیوا میں پرستت کیا جائے گا. تو شوتا, یہ ہے اس سمے کی سبھا میں پرستت کیے جانے والے کاریکرموں کی روپریکھا. اب سے کچھ کھنوں بعد آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سنیں گے انتراشٹریہ سماچار. یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے, لیجیے شروتا سنی انتراشٹریہ سماچار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش. روس کے ودیش منتری نے تہران میں راشٹرپتی رئیسی اور ودیش منتری عبداللہ یان سے بے حد مہتوپورن مدوں پر وچاروں کا آدان پردان کیا. بھارت کے مہاراشٹر راجیہ میں راجنیتک سنکٹ گہرا گیا ہے اور ستاداری پارٹی شیو سینا کے وبھاجت ہو جانے کے لکشن دکھائی دے رہے ہیں. فلسطینی سنگٹھن حماس کے اچھ استریہ پرتندھی منڈل نے ہزب اللہ کے مہا سچیو سید حسن نصر اللہ سے ملاقات کی. افغانستان میں بھوکم کے بعد بے حد کٹھن حالات میں راحت کاری ہو رہا ہے. اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے. اسلامی گڑتنتر ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے کیسپین ساگر کے تٹیے دیشوں کے بیچ سہیوگ کے مہتو پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس علاقے میں باہری طاقتوں کے پاؤں نہیں پڑنے چاہیے. سید ابراہیم رئیسی نے گروار کو روس کے ودیش منتری سرگئی لاوروف سے بات چیت میں کہا کہ دونوں دیشوں کے ادھیکاریوں کے بیچ لگاتار جاری بات چیت کا سلسلہ اس بات کی نشانی ہے کہ آرتھک کھیتر سہت سبھی کھیتروں میں سہیوگ کے لیے سنجیدہ ارادہ موجود ہے. راشٹرپتی رئیسی نے کہا کہ امریکہ کی ایک طرفہ نیتیوں اور پابندیوں کا مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوادھین دیشوں کے بیچ مضبوط سہیوگ ہو. اس ملاقات میں روس کے ودیش منتری سرگئی لاوروف نے یوکرین یدھ کی تازہ استھتی بیان کی اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اور نیٹو کے اکساوے کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی. اسلامی گڑتنتر ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہ یان نے اپنے روسی سمکش سرگئی لاوروف کے ساتھ سنیکت سنواددتا سمیلن میں کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ یتھارتھ وادی بنے گا اور ہم سمجھوتے کے قریب پہنچ جائیں گے. حسین امیر عبداللہ یان نے گروار کو کہا کہ روس کے ودیش منتری سے بہت اچھی بات چیت ہوئی, جس میں کھیتری و انتراشٹریہ مدے بھی چرچا میں آئے. انہوں نے کہا کہ دیرگ کالین سہیوگ کے وشے میں بھی ہماری اہم بات چیت ہوئی. ودیش منتری نے کہا کہ دیرگ کالین سہیوگ کا وشے راشٹرپتی رئیسی کی روس یاترا سے پہلے وچارادھین تھا اور ہمیں آشا ہے کہ وشیشوں کی بیٹھکوں میں اسے انتم روپ دیا جائے گا, جس کے بعد دونوں دیشوں کی سرکاریں اور سنسدیں اسے پارت کریں گی. حسین امیر عبداللہ نے بتایا کہ انٹرنیشنل سیکورٹی فار انفارمیشن کے کھیتر میں سہیوگ کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی اور اس مدعے کو ایران کی سرکار کی منظوری مل چکی ہے اور اب اس پر سنسد میں چرچا ہو رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ آرتھک ویاپارک سانسکرتک ویگیانک وشیوں میں بھی بہت اچھے سمجھوتے ہوئے ہیں. رشت آستارہ ریلوے لائن پروجیکٹ پورا کرنے کے وشے میں بھی اہم سمجھوتا ہوا.
संयुक्त निवेश से इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री का कहना था कि दोनों देशों के बीच वीजा खत्म करने पर भी अच्छा विमर्श हुआ है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में राजनीतिक उठापटक जारी है और सत्ताधारी शिवसेना में दो फाड़ हो चुके हैं, जबकि जानकार गलियारे इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा की मुख्य भूमिका की बात कर रहे हैं। ताजा हालात पर बयान देते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि अगले 24 घंटों के भीतर अगर पार्टी के बागी विधायक मुंबई आ सकते हैं तो शिवसेना महाविकास अघाड़ी से बाहर जाने को तैयार है। संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि विधायकों को गुवाहाटी से बात नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें मुंबई आकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे शिवसेना ना तो झुकने वाली है और ना ही डरने वाली है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी लेकिन फिर सत्ता आएगी भी। संजय राउत के बयान पर कांग्रेस नेता पृथ्वी राज चौहान ने कहा कि हम शिवसेना की सटीक भूमिका नहीं जानते, हमने आज अपने नेतृत्व के साथ बैठक की, कल ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि क्या शिवसेना फिर से भाजपा के साथ जाना चाहती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हम बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए शिवसेना के साथ हैं, प्रवर्तन निदेशालय की वजह से ये खेल हो रहा है, कांग्रेस फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, हम MVA के साथ हैं और रहेंगे, अगर वे किसी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो हमें इसमें कोई समस्या नहीं है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य के मौजूदा राजनीतिक संकट पर कहा कि ये सब बीजेपी का खेल है और वही सरकार को अस्थिर कर रही है। भारत के अधिकारियों का कहना है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में काम करने वाले एक इंजीनियर को एक पाकिस्तानी जासूसा को संवेदनशील जानकारियां देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भारत के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इंजीनियर को कथित रूप से पाकिस्तानी जासूसा ने शादी और मोहब्बत का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और फिर भारत के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में जानकारियां देने पर मजबूर कर दिया। पुलिस के अनुसार महिला जासूस ने इंजीनियर से भारत के परमाणु शक्ति संपन्न इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और पनडुब्बी से मार करने वाले मिसाइलों के बारे में भी जानकारियां मांगी थी। अधिकारियों का कहना है कि शादी के वादे पर इंजीनियर ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले भारतीय मिसाइल अग्नि और के सीरीज की मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारियां शेयर की थी। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर ने अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री से धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन के लिए भारत को विशेष रूप से चिंता वाला देश घोषित करने की मांग की गई है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक सांसद रशीदा तलीब और जुआन बरगास द्वारा सह प्रायोजित प्रस्ताव में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की सिफारिशों को लागू करने का आग्रह किया गया है, जिसने लगातार 3 वर्षों तक भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की मांग की है। फिलिस्तीनी संगठन हमास के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की। हमास के पोलितब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हनिया ने उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ लेबनान की यात्रा की है, जहां उन्होंने सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात में क्षेत्र में मौजूद खतरों पर चर्चा की और प्रतिरोधक संगठनों के स्तर पर सहयोग बढ़ाने, बैतुल मुकद्दस और पवित्र स्थलों की हिफाजत और फिलिस्तीन मुद्दे की समीक्षा की। हिजबुल्लाह से जुड़े मीडिया ने बताया कि फिलिस्तीन, लेबनान और क्षेत्र में होने वाली अनेक घटनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। लेबनान के आंतरिक सुरक्षा संस्था के महानिदेशक अब्बास इब्राहिम ने लेबनान और अवैध ज़ायोनी शासन के बीच सीमा निर्धारण वार्ता में अमेरिकी मध्यस्थ अमोस होकस्टीन को हिजबुल्लाह की ओर से भेजे गए एक चेतावनी संदेश को पहुंचा दिया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लेबनान के आंतरिक सुरक्षा संस्था के महानिदेशक अब्बास इब्राहिम ने अमेरिकी मध्यस्थ को हिजबुल्लाह की चेतावनी से भरा संदेश पहुंचाते हुए कहा कि हिजबुल्लाह ने इस संदेश के माध्यम से चेतावनी दी है कि यदि इसराइल का जहाज लेबनान और अवैध ज़ायोन शासन के बीच विवादित जल में प्रवेश करता है और ये अवैध शासन इस इलाके से गैस निकालने की कोशिश करता है तो ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह सीधे जहाज को निशाना बनाएगा। ज़ायोनी सैनिकों ने वेस्ट बैंक के कई शहरों और गांवों पर हमला कर दिया है, जबकि बैतुल मुकद्दस में भी इसराइली सैनिकों ने छापे मारकर फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। ज़ायोनी सैनिकों ने गुरुवार की सुबह बैतुल मुकद्दस में अल इसावी इलाके में हमला कर दिया और फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिसके दौरान झड़पें हुई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ज़ायनी सैनिकों ने कई फिलिस्तीनों को गिरफ्तार किया है। ज़ायनी सैनिकों ने वेस्ट बैंक के अलखलील शहर के दो इलाकों पर सुबह सवेरे हमला किया। अफगानिस्तान में बचाव अभियान बड़ी मशक्कत के साथ जारी है और भूकंप पीड़ितों को मदद पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हालात खराब हैं। दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में आने वाले भूकंप से 1,000 से अधिक जिंदगियां जा चुकी हैं, जबकि सबसे ज्यादा प्रभावित पक्तिका प्रांत हुआ है। घायलों की संख्या 1,500 बताई जाती है, लेकिन आशंका है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। पक्तिका प्रांत में तालिबान के सैनिक प्रवक्ता ने बताया कि प्रांत के अलग अलग इलाकों में 600 लोगों की जान बचाई गई है। अफगानिस्तान के पास गिनती के हेलीकॉप्टर और विमान हैं और प्रभावित इलाकों तक पहुंचना बहुत कठिन काम है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा के साथ उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। रूस के विदेश मंत्री की ईरानी राष्ट्रपति से भेंट, यमन की वर्तमान स्थिति और महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट जैसे मुद्दों को हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री ने तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की है। इस संबंध में विस्तार से बता रहे हैं अख्तर अब्बास।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से भेंट वार्ता की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहयान के निमंत्रण पर तेहरान के दौरे पर हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार की शाम इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अपनी तेहरान यात्रा के दौरान ईरानी अधिकारियों के साथ दीर्घकालिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने और पश्चिम द्वारा हर दिन प्रतिबंधों के बढ़ते दबाव के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के विकास और विस्तार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सीरिया और अफगानिस्तान समेत क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के क्षेत्र में सहयोग भी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की तेहरान यात्रा के दौरान द्विपक्षीय वार्ता के मुख्य विषयों में रहेगा। इसी तरह परमाणु वार्ता का मुद्दा भी उन मुद्दों में शामिल है जिन पर वरिष्ठ रूसी राजनयिक अपने ईरानी समकक्ष के साथ चर्चा करेंगे। ये यात्रा ऐसी हालत में अंजाम पाई है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 3 जून को अपने ईरानी समकक्ष के साथ होने वाली टेलीफोनी वार्ता में ईरान की अपनी अगली यात्रा पर खुशी का इजहार किया था और हर क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग और संबंधों में विस्तार को अग्रसर बताया था। रूस के विदेश मंत्री ने इस वार्ता में जो ईरान के विरुद्ध बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रस्ताव के पास होने से पहले अंजाम पाई थी, इस प्रस्ताव का मॉस्को द्वारा विरोध किए जाने का ऐलान किया और कहा कि ईरान और एजेंसी के बीच सहयोग के कार्यक्रम का विषय तकनीकी माध्यमों द्वारा हल किया जाना चाहिए। اسلامی گڑتنتر ایران اور روس کے بیچ آرتھک، سامرک، سرکشا اور اسی طرح شیتری اور انتراشٹری مدوں پر سہیوگ اور وچار ومرش جاری ہے۔ اسی کے ساتھ دونوں ہی دیش ایک پکشی واد کا مقابلہ کرنے کے لیے سمان درشٹی کون بھی رکھتے ہیں۔ حالیہ ورشوں میں دونوں پکشوں کے بیچ نزدیکی سہیوگ کے یہی کارن ہیں۔ سیریا مدعا پشچم ایشیا اور اپنے پارمپرک پربھاؤ والے شیتروں میں امریکہ کے بڑھتے پربھاؤ، شیتری سرکشا اور راجنیتی جیسے مہتوپورن شیتری اور انتراشٹری مدوں پر روس اور ایران کے سمان درشٹیکون ہیں، اور 2015 میں جب سیریا سنکٹ چرم پر پہنچ گیا تھا تب دونوں دیشوں نے انتراشٹری آتنکواد سے مقابلے کے لیے سہیوگ کیا تھا، جس کی وجہ سے شیتر کی استھرتا پر گہرا پربھاؤ پڑا۔
انصار اللہ نے یمن میں شتروؤں کے ایک بہت ہی خطرناک شڈینتر کو وفل بنا دیا۔ وسط بیورو کے ساتھ اپستھت ہیں روش زیدی۔
بشکل مکثف وحتى بالاسلحه المحرمه دوليا۔
یمن کے لوک پریہ جن آندولن انصار اللہ کے مہا سچیو نے بل دے کر کہا ہے کہ دشمنوں دوارا راجدھانی سنا کے لیے ایک بڑی سازش تیار کی گئی تھی کہ جسے دیش کے جیالوں نے ناکام بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی راشٹر اس سمے اپنے اتہاس میں پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور دشمنوں کے مقابلے میں دھڑ سنکلپت ہے۔ یمن کے پربھاوشالی اور لوک پریہ جن آندولن انصار اللہ کے پرمکھ سید عبد الملک الحوثی نے بتایا کہ دشمنوں نے یمن کی راجدھانی پر ایک بڑا حملہ کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن چاہتے تھے کہ پہلے سنا میں آنترک طور پر ایسی استھتی پیدا کی جائے کہ جس سے وہاں اراجکتا اور اسرکشا کا ماحول پیدا ہو اور اس کے بعد اس پر حملہ کر کے قبضے میں لے لیں، لیکن یمنی جیالوں نے اپنے مضبوط ارادے اور پرتیرودھ سے دشمنوں کی ساری سازشوں پر پانی پھیر دیا۔
بهدف الاحتلال۔
العالم ٹی وی چینل کی رپورٹ کے انوسار عبد الملک الحوثی نے سنا کے لوگوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ملاقات میں کہا کہ اس سمے جو استھتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ یدھ ویرام کے لیے پریاس جاری رکھے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی سندرب میں ہم نے طے کیا ہے کہ یمن کے سبھی پرانتوں کے لوگوں سے سیدھے بات کروں گا تاکہ ان کی رائے کو بھی معلوم کروں اور تازہ استھتی کے بارے میں ان کو بتا سکوں۔
وَأَعَدُّ لِذَلِكَ حَمَلَاتِ عَسْكَرِيَةَ كَبِيرَةَ۔
انصار اللہ کے مہا سچیو نے سنا کی جنتا کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ سنا دیش کا راجنیتک کیندر ہے اور سبھی سماجک، دھارمک اور راجنیتک وچار دھاراؤں کے ساتھ ایکتا اور ایکجٹتا کا راشٹریہ ادھارن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی لوگوں کے دلوں میں سنا بستا ہے اور اس چیز کو دشمنوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، کیونکہ جب جب انہوں نے یمن پر حملہ کرنے کی سوچی تب تب انہیں دیش کے جیالے ان کے سامنے مضبوطی کے ساتھ ڈٹے نظر آئے اور ان کے سارے شڑیانتروں کو ناکام بنا دیا۔ سید عبد الملک الحوثی نے بتایا کہ دشمنوں دوارا سنا کے خلاف وبھن پرکار کی سازشیں رچی گئیں، لیکن جنتا کی ہوشیاری اور جیالوں کی سترکتا کی وجہ سے سبھی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکا۔ انہوں نے کہا کہ حملہوروں کو لگاتار مل رہی ہار کی وجہ سے انہوں نے یمنی جنتا کے بیچ پھوٹ ڈالنے کی کوششیں کی، لیکن انہیں ان کے اس تچھ کار میں بھی وفلتا ہاتھ لگی۔ کل ملا کر یہ مانا جا رہا ہے کہ یمن یدھ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں اور بھی تیز ہوگا، کیونکہ اب یہ مدعا چین اور روس کی بھی رنگنیتی کے کیندر میں آ گیا ہے۔ یہ مدھپور اور دنیا کے الگ الگ علاقوں میں امریکی پیٹ کمزور کرنے کی لڑائی ہے۔ امریکہ دکشن یمن پر نینترن کر کے باب المندب اسٹریٹ کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش میں ہے تاکہ اس جل مارگ سے گزر کر افریقہ جانے والے چینی جہازوں کے لیے کٹھنائی پیدا کرنا سمبھو ہو، لیکن جس دھڑتا کے ساتھ یمنی راشٹر حملہوروں کو جواب دے رہا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یمن کے پٹل پر ہو رہی گھٹنائیں اور پریورتن نہ کیول سعودی گٹھ بندھن کے بھیتر گھبراہٹ پیدا کر رہا ہے بلکہ امریکہ کو بھی گہری چنتا میں ڈال رہا ہے، کیونکہ جب یمن پر سعودی گٹھ بندھن نے ورش 2015 میں حملہ کیا تھا تب اس نے گھوشنا کی تھی کہ یہ یدھ ہم جلد ہی اپنے پکش میں سماپت کر لیں گے، لیکن جیسے جیسے سمے بیتتا گیا ویسے ویسے اس کے تمام دعوے کھوکھلے نظر آتے گئے، کیونکہ یدھ کے میدان میں یمنی سینا اور سوئم سیوی بل سعودی گٹھ بندھن پر لگاتار بھاری پڑتے جا رہے ہیں۔
اور شوتاؤ، اب رخ کرتے ہیں ہم بھارت کا۔ شیو سینا کے ودھائکوں کی بغاوت کو دیکھتے ہوئے اب اس دل کے ٹوٹنے کی باتیں بھی کہی جانے لگی ہیں۔ نئی دلی سے شمشاد کاظمی کی رپورٹ۔
مہاراشٹر کی ستاداری شیو سینا کے باغی نیتا ایک ناتھ شندے کے گٹ میں باغیوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے، جس سے مہاراشٹر کا راجنیتک سنکٹ اور گہراتا جا رہا ہے۔ شیو سینا میں بغاوت کے بعد ممبئی میں پارٹی کی بیٹھک بلائی گئی، جس میں بتایا جاتا ہے کہ کیول 12 ودھائکوں نے بھاگ لیا۔ مہاراشٹر ودھان سبھا میں شیو سینا کے کل 55 ودھائک ہیں۔ شیو سینا کے باغی ودھائک ایک ناتھ شندے نے، جو باغی ودھائکوں کے ساتھ اسم میں ہیں، دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس شیو سینا کے 40 سے ادھک ودھائک ہیں۔ یہ سنکھیا شیو سینا میں وبھاجن کی شرط کو پورا کرتی ہے۔ مہاراشٹر میں راجنیتک سنکٹ کے بیچ ادھو ٹھاکرے کے استعفے کی پیشکش کے بعد جہاں ان کے سمرتھکوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کہی ہے، وہیں شیو سینا کے باغی ودھائک ایک ناتھ شندے کے سمرتھن میں ممبئی میں پوسٹر بھی لگائے گئے ہیں۔ یدپی میڈیا میں ایسی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں جن میں باغی ودھائک ایک ناتھ شندے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے سمرتھن میں نعرے لگا رہے ہیں، لیکن شیو سینا سانسد سنجے راؤت کا دعویٰ ہے کہ مکھیہ منتری ادھو ٹھاکرے گوہاٹی میں پارٹی کے 21 ودھائکوں کے سمپرک میں ہیں اور ادھو ٹھاکرے کی سرکار ودھان سبھا میں اپنا بہومت سدھ کر دے گی۔ انہوں نے آروپ لگایا کہ ان کے ودھائکوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ شیو سینا نے بھاجپا پر آروپ لگایا ہے کہ مہاراشٹر کے راجنیتک سنکٹ کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ پارٹی نے باغی ودھائکوں سے سترک رہنے کو کہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شیو سینا کے باغی ودھائک مکھیہ منتری ادھو ٹھاکرے کی کارشیلی سے خوش نہیں تھے اور انہوں نے مہتوپورن منترالے سہیوگی دلوں این سی پی اور کانگریس کو دیے جانے کا ورودھ کیا تھا۔ یہ باغی ودھائک اپنے پرانے سہیوگی بھاجپا کے ساتھ مل کر سرکار بنانے کی مانگ کر رہے ہیں۔ ٹیکہ کاروں کا کہنا ہے کہ یدی شیو سینا نے باغیوں کی باتیں مان لی تو ایسی استھتی میں گٹھ بندھن سرکار تو بن جائے گی، لیکن مکھیہ منتری شیو سینا کا نہیں بلکہ بھاجپا کا ہی ہوگا۔ باغیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھاجپا اور شیو سینا کی وچار دھارا ایک ہے اور مت بھیدوں کو وارتا دوارا حل کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ٹیکہ کاروں کا کہنا ہے کہ وچار دھارا کا خیال 2.5 تک ستہ میں رہنے کے بعد اچانک کیوں آیا۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروع آپ نے سنا کارکرم راجنیتک چرچا، اور اب پرستوت ہے کارکرم آج کی بات۔ آج کی بات، شروتاؤ، کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں احمد عباس۔ کارکرم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے بھارت کی اگنی پتھ بھرتی یوجنا کی۔ بھارت میں سینا میں بھرتی کی ویوستھا میں سرکار کی اور سے بنیادی بدلاؤ کیا گیا، جس پر دیش کے بڑے بھاگ میں ہنگامہ مچ گیا۔ ایک طرف جہاں یواؤں کا ورودھ نظر آیا، وہیں دوسری طرف سرکار نے انہیں بھروسہ دیتے ہوئے نئے اعلان شروع کر دیے۔ सरकार ये भरोसा दिला रही है कि 4 साल की सेवा खत्म होने के बाद भी उन्हें अर्धसैनिक बलों जैसी कोई दूसरी सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी और उनके लिए खास आरक्षण होगा। केंद्र सरकार का कहना है कि नई योजना के तहत सेना में आए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। युवाओं को इसके माध्यम से आरंभिक रूप से 3 साल के लिए सेना में सिपाही के रूप में भर्ती किया जाएगा। इससे भारतीय सेना के मौजूदा आयु वर्ग में भी बड़ा बदलाव आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्निपथ कथित तौर पर भारतीय सेना के टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव का नया नाम है। आरंभिक योजना के मुताबिक रक्षा सेवा का 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद इन अग्निवीरों को निजी क्षेत्र में सिविल नौकरियां दी जाएंगी। कई कंपनियों ने इन अग्निवीरों को सेवा में रखने की इच्छा भी जताई है। इन कंपनियों को सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त और अनुशासित जवानों का लाभ मिलेगा। 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ अग्निपथ योजना की घोषणा की। 15 और 16 जून को अग्निपथ योजना को लेकर विरोध बढ़ने लगा। राजनेताओं और राजनीतिक दलों से लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी शुरू हो गई। बीजेपी के नेता वरुण गांधी ने भी इसे लेकर सवाल उठाए। 17 जून 2022 को सरकार इसे लेकर युवाओं को भरोसा दिलाने की कोशिश में दिखने लगी। सरकार ने कहा कि पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के कारण सेना में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी, इसलिए अग्निपथ योजना के पहले साल में आयु सीमा में 2 वर्ष की रियायत देकर उसे 21 से 23 साल किया जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि युवाओं की हमदर्दी में और उनके प्रति संवेदनशीलता के तहत ये योजना तैयार की गई है।
अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला, यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए।
मगर कांग्रेस के कन्हैया कुमार सरकार की नीयत पर संदेह जताते हैं। उनका कहना है कि अग्निपथ स्कीम नहीं स्कैम है, सरकार जो दिखा रही है असली मुद्दा उससे अलग हटकर है।
ये जो आग लगी है, ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये अग्निपथ स्कीम दरअसल एक स्कैम है और इस स्कैम के चलते ही, इस अग्निपथ के चलते ही इस देश के युवाओं को अग्नि में झोंका जा रहा है। मैं इसी बात क्यों कह रहा हूं और पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, क्या सरकार को ये पता नहीं था कि इस तरह से अगर हम कोई योजना लाएंगे, कोई पॉलिसी लाएंगे तो उसका असेसमेंट नहीं था उनके पास? यूथ के बीच में उसका क्या रिएक्शन होगा? काम आप आज कर रहे हैं आनन फानन में, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारा प्रिपरेशन पहले क्यों नहीं किया? आपको पता होना चाहिए कि 2 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ आर्मी में, 2 साल कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। क्या एक्सक्यूज है कि हम कोरोना के चलते रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए? कोरोना में चुनाव हुए, इलेक्शन हुआ, रैलियां हुई, भाषण हुआ, प्रधानमंत्री की सभाएं हुई, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात, अभी मैं बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट सुन रहा था जो गवर्नमेंट की तरफ से, वो कह रहे हैं कि आर्मी के भीतर जो एवरेज एज है उसको हम घटाना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी 17 से लेकर के 25 ही मिलिट्री में, आर्म फोर्सेस में जाने का एज लिमिट है। आप दरअसल क्या कर रहे हैं कि सर्विस पीरियड घटाना चाहते हैं। पहले जो 17 साल है, 17 ईयर्स है, उसको कम करके आप 4 साल कर रहे हैं। और इसके लिए तर्क क्या दिया जा रहा है कि जो लोग आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग ले लेंगे, उनको जब वो वहां से रिटायर होंगे 4 साल में, तो उनको हम एक अच्छा खासा अमाउंट देंगे और उनको हम अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है रिजर्वेशन देंगे। पहली बात तो ये कि जो आर्म फोर्सेस से रिटायर होते हैं उनको अलग अलग रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया जाता है। दूसरी बात, जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, स्कूल से ही लोग एनसीसी ज्वाइन करते हैं। हमारे देश में स्पेशल मिलिट्री स्कूल है जहां लोगों को आर्मी में जाने के लिए प्रिपेयर कराया जाता है। तो ये सारी बातें जो दी बताई जा रही है अब, वो एक डैमेज कंट्रोल है।
18 जून 2022 को गृह मंत्रालय ने कहा कि असम राइफल्स और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में होने वाली भर्तियों में 10% सीटें अग्निवीरों के लिए रिजर्व होंगी। साथ ही भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट देने का फैसला किया गया। अग्निपथ के तहत भारतीय वायुसेना ने अधिसूचना जारी की, जिसमें नौकरी के दौरान छुट्टियों, तनख्वाह और नौकरी खत्म होने पर मिलने वाली धनराशि के बारे में विस्तार से बताया गया। 19 जून 2022 को तीनों सेना प्रमुखों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस योजना को लेकर कहा कि सेना में सुधारों का काम दशकों पहले से शुरू हुआ था, इसे लेकर धीरे धीरे वक्त वक्त पर काम किया जा रहा है और इसी के तहत अग्निपथ की योजना का ऐलान हुआ है। सरकार की इस योजना के ऐलान के बाद बहुत बड़े पैमाने पर असंतोष फैल गया, जिससे सरकार भी घबराई हुई नजर आई, क्योंकि बड़े पैमाने पर ट्रेनों और निजी व सरकारी संपत्तियों को आग लगा दी गई। भारत की इस योजना का बिहार में बहुत ज्यादा विरोध हुआ और कुछ लोग तो कहते हैं कि यहां से नया आंदोलन शुरू होने जा रहा है। भारतीय सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न कमांड के रेसपवाल ने नई योजना के कुछ बिंदुओं को बयान किया।
जो भी अग्निवीर हम लेंगे सिर्फ 4 साल के लिए वो पहले ज्वाइन करेंगे, 4 साल बाद में उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसमें से 25% को रिटेन किया जाएगा फॉर रेगुलर सर्विस एंड 75% विल बी अवेलेबल इन द सिविल स्ट्रीट। इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सेलेक्शन प्रोसेस, टेस्ट कोई चेंज नहीं है। जो एक नॉर्मल जवान की जो भर्ती होती थी पहले, ये उसी तरीके से भर्ती होगी। रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होंगे, मेरिट बनेगी, उसी हिसाब से इनको लिया जाएगा। अब वैसे तो हमें पता है कि पिछले 1.5 साल से कोरोना की वजह से भर्ती नहीं हो पाया था, पर उसके कारण नहीं है, ये एक नया सिस्टम शुरू किया गया है। और इसके बाद में फौज की जो भी भर्ती होगी वो अग्निवीर के थ्रू ही होगी। नॉर्मल जवान की जो भर्ती थी, जो पहले सिस्टम होता था, वो बंद हो गया। अभी सारे की सारी भर्तियां अग्निवीर के थ्रू।
सरकार की ओर से बेशक इस योजना के पक्ष में दलीलें दी जा रही हैं और इसके फायदे गिनवाए जा रहे हैं, मगर युवाओं में भारी निराशा देखने में आती है और कई साल से बेहद मेहनत से सेना में भर्ती की तैयारी में लगे युवा इससे बहुत नाराज हैं। मीडिया से बातचीत में युवाओं ने अपनी व्यथा बयान की।
अगर जिसको अगर आना है तो इसी अग्निपथ स्कीम के अंदर आना होगा।
नहीं सर, ये जो नियम है इस नियम को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 साल के लिए है और 4 साल के बाद फिर 25% जो है बोल रहे हैं कि आगे चल के नियुक्ति किया जाएगा। 75% क्या होगा? 75% कहाँ इन लोग जाएंगे? इसके लिए असम राइफल में बोलते हैं कि कहाँ असम राइफल में कितना लोग को भेजेंगे?
युवा क्या करेगा? जो आर्मी में डिफेंस में नहीं दिया गया रहेगा उसको क्या होगा? जो कर रहे 10% आरक्षित है और जो न्यू कॉमर्स रहेगा, न्यू स्टूडेंट रहेगा, वो कहाँ जाएगा? ये तो उतना में ही जब बरकरार रख देंगे।
युवाओं ने इस नई योजना के नकारात्मक पहलुओं को बयान किया और ये भी बताया कि इससे तो समाज में उन पर भारी मानसिक दबाव रहेगा।
इतना कर दिया सरकार, बीजेपी सरकार, और फिर बोल रही है कि हमारे पास ड्यूटी करिए, बीजेपी सरकार के करेंगे।
आर्मी का जवान है ना सर, जो आर्मी का जो सेना में भर्ती के लिए जाता है उसका सपना रहता है कि बॉर्डर पर जरूर एक बार जाकर देश का सेवा करे, ठीक है? अब वही सपना को जैसे कि चकनाचूर कर दिया गया है मोदी सरकार का जो ये नियम आया है ना सर, नया नियम, उससे बहुत ज्यादा युवा को जैसे कि इतना आक्रोश होना एकदम लाजमी था कि जैसे कि इतना आंदोलन करे। भले जो भी ये आगजनी हुआ उसके आलोचना हुई है, ये सही बात है, पूरा एक साल 2 साल 3-3 साल भी लग जाता है आर्मी का दौर की तैयारी करने के लिए। उसके बाद जब ऊपर से नियम आ जाता है कि सारे पुराना जो प्रोसेस हुआ है उसको रद्द कर दिया गया है, अब बताइए सर, आर्मी का जो जवान तैयारी किया था पूरा अपना देह टूट जाता है, और उसका जब ये निर्णय आ जाएगा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा सर?
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात इसी बीच पूर्व थल सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने एक बयान दिया, जिसे कुछ गलियारे संवेदनहीन और बेतुका बयान बता रहे हैं।
इफ ही वांट्स टू कम ही कैन कम एंड दिस इज अ वॉलंटरी स्कीम इंडियन आर्मी इज अ वॉलंटरी आर्मी, वी डोंट कंस्क्रिप्ट सोल्जर्स, हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए, अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ, ये आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खड़े उतरो ना।
वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणीस कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि सरकार ने इस योजना की घोषणा को लेकर कोई हड़बड़ी की, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि इसका इतना भीषण विरोध होगा। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ ने फर्स्ट पोस्ट में एक लेख में कहा कि इस योजना को लेकर सवाल अधिक हैं और जवाब कम। इसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाना चाहिए था, जिसकी बाद में समीक्षा की जा सकती थी, लेकिन अभी इसे सेना पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। भारत के बहुत जाने माने टीकाकार हैं श्रवण गर्ग। वे वर्तमान घटनाक्रम के कई पहलुओं पर बात करते हैं। एक तो वो इस योजना के ऐलान के बाद बिहार राज्य में शुरू होने वाले आंदोलन के बारे में बात करते हुए बिहार के आंदोलनों और उनके नतीजों पर रोशनी डालते हैं।
बिहार 1974 में हम लोगों ने जो देखा है बिहार में, बिहार की राजनीति देश की राजनीति से अलग है, और ये जो आंदोलन है ये बिहार के आंदोलन सत्ताओं को बदलने के लिए माने जाते हैं। 1974 में के आंदोलन की ही देन है कि आज हम जो गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी सरकारें केंद्र में जो देख रहे हैं, राज्यों में देख रहे हैं, तो ये 1974 के आंदोलन की देन है। उसके बाद ही देश में परिवर्तन का दौर चालू हुआ। तो ये बिहार का जो आंदोलन है ये काफी उस हिसाब से देश की राजनीति के लिहाज से काफी मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ।
श्रवण गर्ग का ये भी कहना है कि योजना में जो चीजें नजर आ रही हैं सरकार की मंशा वो नहीं बल्कि कुछ अलग है।
मुझे लगता है कि ये जो योजना है पूरी की पूरी, इसके जो मंतव्य हैं वो मंतव्य नहीं है जो हम लोगों को बताए जा रहे हैं या हम लोगों के ध्यान में लाए जा रहे हैं, हम लोगों को समझाया जा रहा है। इस योजना को, पूरी योजना को लेकर मैं इसमें कोई पैसे की बचत आर्मी के लिए या उस तरह का कोई नहीं देख रहा हूं, ना मैं इसमें कोई रोजगार का कोई पॉइंट देख रहा हूँ। आप दो चीजें एक साथ घोषित करते हैं कि 10 लाख लोगों को 1.5 साल में रोजगार देंगे और फिर आप 50,000 लोग या 45,000 लोगों को 4 साल के लिए रिक्रूट करेंगे, इसमें से 75% को 4 साल के बाद बाहर कर देंगे। दोनों में कोई साम्य नहीं है, दोनों का रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो छात्रों के बीच में असंतोष है ये इसको एड्रेस करने के लिए सरकार ने कोई प्रयास ही नहीं किया और न विपक्षी दलों को यकीन में लिया।
वर्तमान समय में योजना को लेकर जिस सतह पर विरोध हो रहा है उसे देखते हुए ये नजर आ रहा है कि सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। देखना यह है कि सरकार इन हालात से कैसे निपटती है। क्या कृषि कानूनों की तरह उसे ये योजना भी वापस लेनी होगी या उसे कोई और रास्ता मिलता है। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज की बात, और अब आपकी सेवा में प्रस्तुत हमारा अगला साप्ताहिक कार्यक्रम सफल महिलाएं।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम एक अन्य ईरानी सफल महिला से परिचित होंगे, आशा है आप इस ओर ध्यान देंगे। मित्रों, डॉक्टर मीनू मुहरिज उन अधिकारियों और विशेषज्ञों में से एक हैं जो कोरोना महामारी के दौरान मीडिया के साथ लगातार साक्षात्कारों के माध्यम से एक जाना पहचाना चेहरा बन गई थीं। उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में आम लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर मोहरिज ने मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को कोविड-19 से बचने के अनेक रास्तों को बताया, जिससे बड़े स्तर पर कोरोना वायरस के रोकथाम में मदद मिली। दुर्भाग्य से हालिया कुछ वर्षों में कोरोना वायरस ने लाखों लोगों को संक्रमित किया और हजारों लोगों की जानें ले ली। ऐसी स्थिति में इस्लामी गणतंत्र ईरान के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने इस बीमारी को पहचानने और नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी उपकरणों का इस्तेमाल किया। डॉक्टर मीनू मोहरिज, जो कि संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, राष्ट्रीय कोरोना नियंत्रित समिति की स्थायी सदस्य हैं। उन्होंने उस समय जब कोरोना अपने चरम पर था, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों का मार्गदर्शन किया ताकि उन्हें अधिक से अधिक कोरोना के खतरों से अवगत कराया जा सके। उनके इस प्रयास ने उन्हें ईरान सहित पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। आज के कार्यक्रम में हम डॉक्टर मीनू मोहरिज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर मीनू मोहरिज का जन्म सन 1945 में तेहरान में हुआ था। उन्होंने 1963 में इंटर किया और उसी समय उन्होंने तेहरान विश्वविद्यालय के मेडिकल विभाग में चिकित्सा की पढ़ाई भी शुरू कर दी। 1970 में उन्होंने सामान्य मेडिकल पढ़ाई पूरी करने के बाद संक्रामक रोगों के क्षेत्र में अपनी शिक्षा जारी रखी। सन 1973 में मीनू मोहरिज ने संक्रामक रोगों के क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में डिग्री प्राप्त कर ली। डॉक्टर मोहरिज विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ के रूप में कई वर्षों से ईरान और पूर्वी मध्य पूर्वी सागरीय क्षेत्रों में एड्स पर शोध कर रही हैं। सन 2015 में ईरान एड्स अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी, जिसकी प्रमुख डॉक्टर मीनू मोहरिज को बनाया गया था। एड्स अनुसंधान केंद्र ईरान में एड्स पर बुनियादी और समुदाय आधारित अनुसंधान के क्षेत्र में ईरान की एक अग्रणी संस्था है। डॉक्टर मोहरिज राष्ट्रीय टीवी और मलेरिया समिति की सदस्य होने के साथ ही साथ स्वास्थ्य विज्ञान विभाग की सदस्य भी हैं। इसके अलावा वो संक्रामक और टॉपिक्स रोग पत्रिका की संपादक भी हैं। डॉक्टर मीनू मोहरिज तेहरान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और ईरानी आयुर्विज्ञान अकादमी की सदस्य भी हैं। वो चिकित्सा प्रणाली के संगठन द्वारा एक अनुकरणीय चिकित्सक हैं। उन्हें प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही वे उन शीर्ष व्यक्तियों में भी शामिल हैं जिन्हें अल्लामा तबाताबाई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। अल्लामा तबाताबाई राष्ट्रीय पुरस्कार हर साल देश के उत्कृष्ट शोधकर्ताओं और प्रोफेसरों को ही प्रदान किया जाता है। डॉक्टर मीनू मोहरिज ने दो पुस्तकें लिखी हैं। चिकित्सा के क्षेत्र की चार प्रसिद्ध पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद भी किया है। इस प्रमुख विशेषज्ञ के फारसी पत्रिकाओं में 41 लेख और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 60 लेख प्रकाशित हो चुके हैं। वे उस समूह की भी सदस्य हैं जो देश के उपचार दिशा निर्देशों को संकलित करता है। डॉक्टर मीनू मोहरिज खुद अपने बारे में बताते हुए ये कहती हैं कि मैं लगभग 35 वर्षों से तेहरान मेडिकल एवं रिसर्च विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है इसी तेहरान यूनिवर्सिटी की ही देन है। मैं एड्स अनुसंधान केंद्र की स्थापना के बाद से इसकी निदेशक रही हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ के रूप में 30 वर्षों से मैं ईरान में एड्स पर शोध कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं विज्ञान अकादमी की भी स्थायी सदस्य हूँ। डॉक्टर मोहरिज उन महिला डॉक्टरों में से एक हैं जिन्होंने कोविड 19 वायरस की शुरुआत से ही चिकित्सा टीम के साथ मिलकर काम करना आरंभ कर दिया था। इस दौरान वो 13 मार्च 2020 को स्वयं कोरोना वायरस की चपेट में आ गई थीं। होम क्वारंटाइन रहने के बाद वो इस वायरस पर काबू पाने में सफल रहीं, जिसके तुरंत ही बाद उन्होंने फिर से कोरोना संक्रमितों की सेवा करना शुरू कर दी। डॉक्टर मोहरिज ईरान में चिकित्सा कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए एक भाषण में ये कहती हैं कि एक समय जब दुनिया भर के लोग कोरोना महामारी के भय से अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, उस समय मेडिकल स्टाफ पूरी बहादुरी के साथ कोरोना से लड़ रहा था और आम लोगों के लिए वो सुरक्षा कवच बना हुआ था। वे कहती हैं कि हमें सभी ऐसे बलिदानों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आम लोगों को इस खतरनाक वायरस से सुरक्षित रखने के लिए दिन रात एक कर दिए। डॉक्टर मोहरिज कहती हैं कि कोरोना महामारी के दौरान एक और चीज देखने को मिली और वो थी लोगों का एक दूसरे के प्रति प्रेम और मदद का जज्बा। वे कहती हैं कि मैं सभी से ये कहना चाहती हूं कि अपने इस आपसी प्रेम और मदद की भावना को इसी तरह हमेशा संभाल कर रखिए। डॉक्टर मीनू मोहरिज कोरोना काल में व्यक्तिगत स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को आज के समय में आपसी प्यार का सबसे अच्छा नमूना बताती हैं। इस संबंध में वे कहती हैं कि कोरोना ने हमें यह सिखा दिया कि जीवन की बुनियादी चीज़ों का कैसे ख्याल रखा जाए, जैसे हाथ धोना कितना ज़रूरी है, जब खांसी आए तो क्या करें, और इसी तरह बहुत सारी आदतें जो इंसान को साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित करती हैं। वे कहती हैं कि जो बातें हमने कोरोना के काल में सीखी हैं, हमें चाहिए कि उनको अपने जीवन का हिस्सा बना लें, क्योंकि स्वच्छता ऐसी चीज है जो स्वयं ही बहुत सी बीमारियों को इंसान से दूर रखती है। डॉक्टर मोहरिज कहती हैं कि हम देखते हैं कि दुनिया भर में एक के बाद दूसरी कोरोना की लहरें आ रही हैं। कभी ऐसा लगता है कि जैसे अब कोरोना खत्म हो गया, आम लोगों का जीवन फिर से सामान्य होने लगता है, लेकिन फिर अचानक से कोरोना एक दूसरे रूप में सामने आता है और मानवीय जीवन पर खतरा बनकर मंडराने लगता है। उनका कहना है कि बार बार कोरोना वायरस का वापस आना ये बताता है कि दुनिया भर के बहुत से लोग दुर्भाग्यवश इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यही कारण है कि जिस वायरस को बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था, वो आज भी मानव समाज के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। हमें अपने जीवन की बहुत सी आदतों को बदलना होगा, तभी इससे छुटकारा मिलेगा, नहीं तो ये वायरस रूप बदलकर आता रहेगा और आम लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचाता रहेगा। डॉक्टर मीनू मोहरिज की मुख्य गतिविधि एड्स का मुकाबला करने के क्षेत्र में भी है। ईरानी एड्स अनुसंधान केंद्र के प्रमुख के अनुसार एचआईवी एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ईरान और इस क्षेत्र में ईरान एड्स अनुसंधान केंद्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईरानी एड्स अनुसंधान केंद्र का उद्देश्य अन्य अनुसंधान केंद्रों के सहयोग से और मॉडल कार्यक्रमों के अनुसार शिक्षा तथा विकास की सहायता से एचआईवी संक्रमित लोगों की आयु को बढ़ाने, एचआईवी संचरण को रोकने और एचआईवी के साथ रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में सुधार जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ये केंद्र तेहरान आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, जो तेहरान में इमाम खुमैनी अस्पताल के परिसर में स्थित है। इस केंद्र ने आधिकारिक तौर पर एचआईवी की रोकथाम, उपचार और देखभाल के कार्यक्रमों को शिक्षित करने, शोध करने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बहुत अधिक गतिविधियां की हैं। ईरान एड्स अनुसंधान केंद्र में वर्तमान समय में 40 पूर्णकालिक और अंशकालिक चिकित्सक शोधकर्ता हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य अनुसंधान केंद्रों के साथ भी इसका व्यापक सहयोग जारी है। डॉक्टर मीनू मोहरिज ने सन 1975 में, जब वे 24 साल की थीं, डॉक्टर कुरूश शमीमी, जिनकी उम्र उस समय 30 साल थी और जो पेशे से एक चिकित्सक थे, शादी कर ली थी। हालांकि उनके पास विदेश जाने के सभी मार्ग प्रशस्त थे, लेकिन उन्होंने ईरान में रहकर देश के लोगों की सेवा करने को प्राथमिकता दी। डॉक्टर मोहरिज के पति कहते हैं कि मैं कभी भी ईरान छोड़कर जाना पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी ईरान से बाहर जाना पसंद नहीं करती हैं। हम लोगों ने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं है, जबकि हमारे परिवार के बहुत से लोग विदेश में रहते हैं। डॉक्टर शमीमी कहते हैं कि मेरा सगा भाई और मेरी पत्नी के भी सगे भाई अमरीका में रहते हैं। उन्होंने हमारे अमरीका जाने और वहाँ की नागरिकता पाने की सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया था, लेकिन हमें किसी भी स्थिति में ईरान से जाना पसंद नहीं है। वे कहते हैं कि सच्चाई ये है कि हम और हमारे समकालीन सभी परिस्थितियों में डटे रहे, संघर्ष किया और शून्य से शुरू किया, हालात को अपनी ओर मोड़ लिया, और अब जब हमने खुद को इस्लामी व्यवस्था के अनुसार ढाल लिया है, जो कि हमें पसंद भी है, तो फिर कैसे ये हो सकता है कि हम इस देश को छोड़कर बाहर चले जाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। आपसे अनुमति चाहते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफल महिलाएं, और हमारा ये प्रसारण आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा था शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचार हमें ज़रूर बताइए। पत्र व्यवहार के लिए आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, hindi@wbs.ir और हमारी वेबसाइट है pastorday.com/hi। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़।